आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो एबीसी ऑफ पेरेंटिंग है। चूँकि हम इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तरतीब तो चल ही रही है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों में बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी करते ही जाएंगे जो हमें अमूमी तौर पे फ़ायदा देंगी। तो बुनियादी तौर पे हमारा ये टॉपिक जो है, ए से क्या शुरू होता है, बी से क्या शुरू होता है, और इसी तरह जेड तक चलेंगे। छोटी छोटी टिप्स हैं बच्चों की तरबियत के नाते से। नोट करना चाहते हैं? हैं, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से मदद मांगते शुरू करते हैं। आप देखिए कि लफ्ज़ पेरेंटिंग जब भी जहन में आए तो हमेशा अब हमारे जहनों में किस चीज़ का तसव्वुर आना चाहिए? ज़िम्मेदारी का, इंजॉयमेंट, मोहब्बत। क्योंकि ये एक ऐसा खूबसूरत काम है कि जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं ना और इंजॉय करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और फिर एक नई नस्ल चलती है। ये ऐसी है कि जैसे कोई बीज आप घर में लाएं, लेकिन आपकी गलती की वजह से वो बीज ज़ाया हो जाए, आप उसको पानी ना दे सके, या ज़्यादा पानी दे दिया, या आपने उसके अंदर खाद नहीं डाली, कुछ भी हो, तो शायद आपको सारी ज़िंदगी उसका अफसोस रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा मैंने क्यों किया। बिल्कुल, एक छोटा सा बच्चा भी क्या होता है, अल्लाह सुब्हान तआला में एक छोटी सी कॉम्पल दे देता है, एक छोटी सी पनीरी कह लें आप, कहाँ से एक मासूम बच्चा बढ़ता है और एक कड़ियल जवान में ढलता है। आज भी अब किसी स्ट्रॉन्ग मर्द को जो आपका भाई है, बाप है, तसव्वुर में ला के थेचे, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये क्या था कल और आज इतना बड़ा बन गया। और मुझे यकीन है कि अगर हम अपने बचपन को ख़ुद भी याद रखें तो फिर हम कभी भी बड़े होकर ना अकड़ें और ना बहुत ज़्यादा हम अपने ऊपर इन चीज़ों को तारी करें कि हम बहुत बड़े हो गए। क्योंकि इंसान अपनी असल को याद रखता है तो उससे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता है। और आप सबसे बढ़ के ये देखिए कि इंसान के अंदर फिर आजजी रहती है। आज बड़े होने पे कोई इंसान ये पसंद नहीं करता कि उसको कोई दूसरा साफ़ करे। ये ऐसे पर्सनल काम होते हैं कि जिसको इंसान किसी के सामने भी नहीं करना चाहता, किसी से करवाना तो दूर की बात है। लेकिन आप देखिए कि अगर हमें पता चले, पता तो सबको ही है, ख्याल नहीं करते ना, याद नहीं रखते, लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारी माओ ने, हमारी नानियों ने, हमारी दादियों ने, और इसी तरह फिर हमारे बाप ने हमें उठा उठा कर किधर से किधर रखा, हम कहाँ चलते रहे फिरते रहे, तो ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर से तकब्बुर को भी तोड़ती हैं। तो आइए एबीसी ऑफ पेरेंटिंग से शुरू करते हैं कि क्या करें कि हमारे बच्चे हकीकत में हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। तो तरीका इसमें यही है कि ए से क्या और बी से क्या। प्रेजेंटेशन हमारे सामने है, एबीसी ऑफ पेरेंटिंग, ट्राई देम। हमने ये सारी चीज़ें, एक तो वैसे ही एक इन्जॉयमेंट भी होती है कि चले अच्छा लगता है, गेस करेंगे ए से क्या है, बी से क्या, लेकिन दूसरी चीज़ जो इसमें हमें दिखनी चाहिए कि हमें सोचने की भी आदत पड़ती है ना, और कभी बैठे हुए आप भी बैठ के लिखा करें चीज़ें। तो ए से क्या शुरू होता है, ऑलवेज फील रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर तरबिया। यानी हमारे लिए बच्चों की तरबियत के नाते से लफ्ज़ ए क्या सिखाता है कि हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करें। बस बच्चियों को ये बहुत ही किस्म की गलत फहमी होती है कि बड़ी छोटी उम्र में चूँकि हमारी शादी हुई है तो इसका ये मतलब है कि हम बच्चे नहीं पाल सकती। देखिए, ये कहना बहुत दुरुस्त था अगर बच्चा अचानक आपकी गोद में आ जाता, अगर 9 महीने की मुद्दत में जिस्म को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कैफियत से गुजारा है ना, तो आप इसके बाद आप माँ बन के तरबियत करने के बिल्कुल काबिल हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, नानी की नहीं है, दादी की भी नहीं है। अगर वो करते हैं तो ये एहसान करते हैं। और इसमें नानियों और दादियों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बच्चियों को बिल्कुल ही बेनियाज ना कर दे। कभी कभी कर लेनी चाहिए मदद, लेकिन ये सोचना कि मेरा ही काम है, मैं ही करूँ, और पसंद ही ना करना, तुम्हें तो करना ही नहीं आता, तुम तो ऐसे कर दोगी, तो हमेशा समझिए, मर्द भी, चाहे आप 18 साल की उम्र में बाप बन रहे हैं या 28 साल की उम्र में, अब वो अल्लड़ बन गया, वो अब प्ले बॉय होना गया, अब एक बाप है, आपको ये बच्चा जो है इसको रेस करना है, तो लिहाजा इस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। बी क्या है, ब्रिंग देम टू मस्जिद। अब मस्जिद को आप मस्जिद कह लें, मदरसा कह लें, इस्लामी इंस्टीट्यूट कह लें, हज और उम्रे के लिए सऊदी अरब ले जाना कह लें, इस्लामी ममालिक में ले जाएं ताकि वहाँ का कल्चर देखें, ये सब आता है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हमने अपने बच्चों को शुरू से ही मस्जिदों के रास्ते दिखाए ना, इंशाल्लाह फिर क्लब्स और इस तरह के गैंग्स के वो रास्ते नहीं देखेंगे। शर्त यह है कि वहाँ भी रूह के साथ दीन का काम हो। अपने बच्चों को साथ लाइए। आजकल हमारे यहाँ ये बहुत एक मसला हो गया कि बच्चे के नाम के साथ ही लोग, नहीं बच्चों को आप नहीं ला सकते, बच्चे फला नहीं आ सकते, ये कैसे हो सकता है? आप देखिए कि बाज़ दफ़ा आप देखें मस्जिदों में कभी जाएँ माएँ भी, स्पेशली ईद वगैरह पे अगर जाना हो, तो फिर क्या होता है कि बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब मौलवी साहब ऊंची आवाज़ से बोलते हैं माइक पे, या अजान होती है, कुरान की तिलावत है, क्योंकि बच्चा यूज़ टू नहीं है इन चीज़ों का। तो आप शुरू से अपना माहौल बनाएं। और मैं अक्सर ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि आपको भी कम अज़ कम एक या दो नमाजें मस्जिद में फैमिली के साथ पढ़ने जाना चाहिए। इस चीज़ को मैं यहाँ आके वैसे काफ़ी मिस करती हूँ नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत कम रुझान है औरतों और बच्चों का मस्जिदों में जाने का, मर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी शायद मस्जिद में जुमे को ज़्यादा जाते हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में जो चीज़ मैंने देखी, हर जगह ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन ये कि जब शाम होती है ना 4-5 बजे, जब मर्द आए, खाना वाना खा लिया, यानी मगरिब से पहले सब फारिग जब हो गए, तो उसके बाद एक किस्म की फीलिंग आती है, चलो जी बाहर भी निकलना ना, बच्चों का भी दिल कर रहा होता है, छोटे बच्चे हैं सुबह से अंदर ही बड़े हुए हैं पड़े हुए हैं, अब उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो बीवी मियाँ बच्चों को गाड़ी में डालते हैं, मस्जिद में चले गए, वहाँ मगरिब पड़ी। अमूमन लोग जिनका दीनी रुझान है वो मगरिब से ईशा मस्जिद में रहते हैं। रमज़ान में कोई रमज़ान मुझे नहीं याद कि हमने घर में बैठ के इफ्तारी बनाई या की हो। जो बनाते हैं वो लेके अपना ट्रे जो जिसने लेके जाना होता है मस्जिदों में लेते हैं, कोई अरबी है, कोई सोमाली है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अफगानी है, अच्छा लगता है। तो आप शुरू से ये चीज़ करें, अपने घरों में ये रुझान डालें। अब आप यहाँ हैं, आप कहती हैं आपके बच्चे मस्जिद में जाएँ, तो आप भी चली जाइए साथ, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो बात क्या है कि बच्चों का मिजाज बनाइए। ये जो बड़े होके हम कहते हैं ना मिजाज बनेगा, वो एकदम नहीं बनता, उसके लिए पहले से बेस बनी होती है। सी देख लीजिए, चैलेंज देम टू हाई गोल्स इन दीन, इसकी आज बहुत कमी है ना। आज हमने खुद बड़े बड़े ख्वाब देखे, और ख़ास तौर पर दीन के नुक्ते नज़र से, और ना बच्चों को दिखाए। मुझे यहाँ अलामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। पहली चीज़ निगाह बुलंद, हाई अराइजेस ऑप्टमिज्म, अपने बच्चों को बड़े बड़े गोल दिखाएं, मेरा बेटा ये काम करेगा, तकबर नहीं फख्र नहीं, अंदर डर भी हो खौफ भी हो आपकी आवाज़ में लर्जा भी हो, लेकिन तारीख की मिसालें दें, ये मेरा बेटा मोहम्मद बिन कासिम बनेगा, ये मेरा बेटा हसन बनेगा, ये मेरा बेटा हुसैन बनेगा, मेरा ये बेटा ईसा बनेगा, ये मेरा बेटा तो मूसा की तरह, इस तरह उनको दीन के बड़े बड़े काम दिखाएं। घर में बैठे तो ये बातें किया करें, खाने के दौरान कभी दावतों में बैठे, कुछ बड़ा काम करना है, मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई दीन के नाम पे बड़ा काम करूं। हमारे जहन में बहुत भी बड़ा ख्याल आया ना, तो हम कहते हैं एक मस्जिद बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है पाकिस्तान में, स्कूल खोलना है। कई लोग ऐसे हैं, पैसा लगाने को तैयार है, लगाए पड़े हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम करने से वालों से जगह बनती हैं। आप मिट्टी की जगह आप पत्थर की दीवारें बना लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि वहाँ के लिए तैयार नहीं है लोग। हमारी ये नस्लें ट्यूटर्स भी हैं, इंशाल्लाह ये दीन के दाई बनेंगे, इनके लिए आपने बड़े बड़े ख्वाब देखने हैं। इसकी मिसालें देने लगूंगी ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो लिहाजा आप अब बस इशारे को समझिए, और जिसको जिस मौजू पे ज़रा हेल्प चाहिए हो बाद में बात करें कि हम क्या करें, इसमें किस तरह से मामला करें। डी डिलाइट इन देयर अचीवमेंट्स, माशाल्लाह आपके बच्चे दुनिया की कोई कामयाबी लेके आए या दीन की, हमेशा उनकी उस कामयाबी पे खुशी का एहसास करें, माशाल्लाह मेरा बेटा कामयाब हुआ, सीने से लगाएं, प्यार करें, छोटा बच्चा हो या बड़ा। आप देखिए कि जिस तरह हमें कोई खुशी मिलती है तो हमारा दिल चाहता है ना कि हम किसी से शेयर करें, कोई हमारी उस बात पे खुशी महसूस करे। बच्चों का दिल हमसे ज़्यादा चाहता है, क्यों? कि बड़ों में कुछ ना कुछ तहम्मुल होता है, हेमल होता है, वो सहार लेते हैं खुशी गम को, बच्चे नहीं सहारते, तभी तो कोई एक कैंडी उनके हाथ से लेते हो रोने लग जाते हैं, छोटे से गम पे उनकी तो ऐसे लगता है दुनिया किसी ने ले ली, और आप उनको एक कैंडी पकड़ा दे तो लगता है सारी दुनिया भी मिल गई, क्योंकि अंदर जगह वो थोड़ी सी है ना दिल में अभी, तो उनकी छोटी छोटी खुशियों पर रहे। मिसाल है कि बच्चे ने स्कूल में कोई चीज़ बनाई, कोई भी उसने एक्टिविटी बनाई, वो हाथ में पकड़ के ला रहा है ना, तो खुशी खुशी हो मेरा बच्चा, छोड़े काम अपना। बस जब हम इतने टूटे दिल से उन बच्चों की बातें सुनते हैं और मानते हैं, बच्चे बात कर रहे होते हैं हम बैठे हुए, अच्छा करना कैसे? यहाँ मैंने टिप्स जो आगे भी देनी है वो यहीं देती जाऊँ साथ साथ, कि बाज़ दफ़ा हम अपने बच्चों को एंटरटेन ऐसे नहीं करते। मिसाल है, आप ज़रा एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए, आप खाना पका रही हैं, आपको जल्दी है कि बच्चों के लिए भी खाना पकाना है, मियाँ के भी आने का टाइम है, बट सर्वर पीछे से बच्चा आता है, दरवाजा खोलता है, अम्मी असला अम्मी मैंने ये देखे ये क्या बनाया ये क्या। अच्छा वहीं बैठे ना चूल्हे की तरफ आपका मुंह है, खाना पका रहे, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा अच्छा गुड गुड बहुत अच्छी बात है। नेवर नेवर डू दिस। देखिए आई कॉन्टैक्ट नंबर एक और लेवल, ये दो बराबर की चीज़ें कम्युनिकेशन की की हैं। आपने किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम की दावत देनी है ना, तो आप यूं चलते फिरते नहीं दे सकते कि आप इधर हैं तो उसका मुंह उधर है, नहीं सामने बैठी उसके लेवल पे बैठी, आंखों में आंखें डालिए, हाथ में हाथ पकड़ के फिर उसको बताएं कि देखो अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो हमारी आंखें हैं ना, इसमें से भी रेस निकलती हैं, हमारे हाथों में से रेस निकलती हैं, ये कम्युनिकेशन होती है। बच्चे को स्कूल से आते ही या किसी ऐसे मौके पे जब आपको लगता है कि उसके पास आपके लिए कोई न्यूज़ है, मैं कहती हूँ आप अगर खाना क्या पका रहे हैं, दूध भी उबाल रहे हैं ना, तो चूल्हा बंद करके 2 मिनट अपने बच्चे को टाइम दें, उसकी तरफ पलटें, खुद नीचे झुकें, वो छोटा है ना अभी, आप झुक जाएं अभी, आप अब नीचे होंगे ना फिर देखिएगा कल वो आपके लिए बड़ा होगा, फिर आप अपनी बाजू खोलें, फिर गले से अब बताओ मेरे बेटे पहले मैं तुम्हें प्यार करूंगी फिर बताओ क्या किया, यानी उनको खुशी का एहसास दें। आप यकीन करें अगर ये बचपन से ही 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल उम्र में अगर बच्चों को पता चल गया ना कि मेरी माँ मेरी हर बात को खुशी से सुनती है, मशवरा भी देती है, मुझे राय देती है, बाहर बहुत कम लोग दोस्त बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैमिलीज को मैं जानती हूँ कि घर ही उनके लिए एक बेस्ट किस्म का फ्रेंडशिप हाउस है। माँ की बच्चों से दोस्ती, बच्चों की आपस में दोस्ती, माँ बाप की, बहनों की, भाइयों की, बड़ा खूबसूरत माहौल है। और आप नोट करें जिन घरानों में आपस में बहुत प्यार होता है ना, उनके घर जाके आपको बड़ा मज़ा आता है, या आप आजमा लें अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों में। जब भी आप किसी के घर जाएं और अगर घर वाले खुद ही नहीं आपस में सही तरह बात कर रहे, माँ से पूछे बच्चा किधर है, उधर है उधर है, आपको ऐसे बदगुमानी होने लगती है कि शायद मेरे आने की वजह से ऐसे डिस्टर्ब हो गए, लेकिन आप अपने बच्चों को खुश करें, उनकी खुशियों में आप भी खुशी महसूस करें और एक दूसरे को भी कहें कि वो एक दूसरे की चीज़ों पर खुश हों। ई पे चलते हैं, एक्सॉल्ट अल्लाह इन देयर प्रेजेंस, सुभान तआला, अल्लाह सुभान तआला की बड़ाई बयान किया करें उनकी मौजूदगी में। बच्चों के सामने जब हम अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे ना, तो लाशौरी तौर पे अल्लाह उनके लिए बड़ा हो जाएगा। हम अपनी बड़ाइयाँ, अब्बा की बड़ाइयाँ, ख़ानदानी, हम तो नवाब होते हैं, वो तो बुलाए हैं, वो अरबी में कहते हैं ना कि मेरे नाना तो नवाब थे, तो कहते हैं आप क्या हैं। अरबी की एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, मेरी एक टीचर थी उसने भी सुनाई थी कि मेरा मामू जो है वो घोड़ा है, आपने बेगाल का नाम सुना है, खच्चर बोलते हैं जिसको, अब ये गधे और घोड़े के मिलाप से बनता है, यानी इसकी माँ शायद घोड़ी होती है और बाप इसका गधा होता है, उससे ये बच्चा पैदा होता है, खच्चर जिसको बोलते हैं अरबी में, बेगाल कहते हैं। तो जब लोग इससे पूछते हैं ना कि तुम, इसको बड़ी शर्म आती है कि मैं गधे के ख़ानदान से हूँ, तो जब कोई इससे दूसरा जानवर पूछता है, अच्छा भी सुनाओ बेगाल तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या ख़ानदान है, तो कहता है कि मेरा मामू जो था ना वो घोड़ा था, क्योंकि वो माँ की निस्बत से उधर ले जाता है ना। तो बस दफ़ा हमारे अंदर भी ये ख्याल आता है कि हम अपनी बड़ाइयाँ बयान करते रहे लेकिन हम अल्लाह और दीन के नाते से कम बयान करते हैं, तो आपकी ज़ुबान पे सुभान अल्लाह का लफ्ज़ रहे। आपका बच्चा कोई अच्छा काम किया, आपके सुभान अल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा इतना अच्छा काम किया है, कोई भी काम अपना, एग्जैजरेशन नहीं, और यकीन करें ये पढ़ाने और सिखाने वाली बातें कोई नहीं है, ये तब होगी जब वाकई आपको अल्लाह पाक लगेगा, सुबहानहू व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है। तो इंशाल्लाह आप अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करें, जिस घर में हर वक्त अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह की बड़ाई होगी, तो फिर वहाँ दूसरों को भी इसकी आदत होगी। एफ पे चलते हैं, फ्रॉन ऑन ईवल, बुराई को घूरे। ये फ्रॉन क्या होता है, अबसा व तवल्ला, तेवरियाँ चढ़ाना, यानी जब भी कोई बुराई देखे तो अपने बच्चों के सामने नागवारी का इजहार करें। ये कोई स्माइली होना नहीं है कि आपके बच्चे ने कोई गलत कपड़ा पहन लिया, गलत हरकत कर ली, गलत चीज़ सुनने और देखने लगा और आप कह रहे कोई बात नहीं, अब मैंने पेरेंटिंग का कोर्स भी कर लिया है, मैंने तो बस अब हर तौर बच्चे को जीतना है, तो फिर याद रखिए वो दूसरी किस्म के पेरेंट नहीं बनना, प्लीजिंग पेरेंट नहीं बनना। अगर आपका बच्चा कोई गलत काम करे या आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई गलती हो, बस वह पूरी फैमिली कहीं जाती है, मिसाल दे देती हूँ, जैसे सब बड़े मज़े से तैयार होके शौक से शादी में गए, अब बच्चों को भी पता है अम्मी भी खुश थी, सब तैयार हुए, जो ही अब हॉल में गए वहाँ आपने क्या देखा, माहौल ठीक नहीं है, किसी भी तरह से इस्लाम की हदें टूट रही हैं, कुछ म्यूज़िक है व्हाटएवर, तो फिर आप वहाँ फ्रॉन करें, फिर आपके बच्चों को एहसास हो कि अम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें, कुछ कहें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके साथ ही बच्चे के भी दिल में लाशोरी तौर पे इस चीज़ का एहसास होगा। आगे चलते हैं जी पे, गिव देम लव एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी का कमेंट था कि आपके इस सेशन को सुनने के बाद अब मुझे अपना बच्चा और प्यारा हो गया, मुझे अब लगने लगा कि वाकई ये इतना प्यारा है। तो बस दफ़ा जो चीज़ें हमारी गोद में होती हैं, हमारी रेंज में होती हैं ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। यकीन करें आप इनको आज प्यार देंगे तो कल प्यार मिलेगा। आज आप इनको अंडरस्टैंड कीजिए, कल ये आपको करेंगे। हमारा टॉपिक है ना क्या, कि कैसे बच्चे मुझे सुने, हैं क्या तरीके अख्तियार करूँ कि मेरे बच्चे मेरी बात सुने। ये तरीका है, अब आप उसकी सुने। बचपन में जो माँ बाप अपने बच्चों की सुनते हैं, सुनने से मुराद है कि जिदे पूरी करना नहीं है, उनके लाड ऐसे नहीं देखने, अंडरस्टैंड कीजिए वो कहना क्या चाह रहा है, उसके मासूम से छोटे से दिल में क्या पड़ा हुआ है। आप उनको अंडरस्टैंड करें, ये रो रहा है तो क्यों रो रहा है, इस वक्त चिड़चिड़ा हुआ है तो क्यों है। इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े होने पे वो भी आपकी बात पे कान धरेंगे। एच हियर देयर प्रॉब्लम्स बट बी देयर फॉर देम, उनके मसाइल को सुनिए और फिर हर मुमकिन हद तक उनकी मदद करने के लिए वहाँ रहिए। देखिए अगर बच्चे आपसे आके कोई अपना मसला पेश करते हैं ना आपके सामने, तो खुश हों। किस बात पे कि बच्चे को मसला पेश आया, नहीं 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 इस बात पे खुश हों कि बच्चे को मसला पेश आया तो वो आपके पास आया। आज का जो दौर है ना, हदीस की रोशनी में अगर आप देखें तो वही दौर आ गया कि जिसमें नबी सल्लम ने फरमाया कि बेटा अपने बाप से बेनियाज होगा और दोस्त उसको प्यारा होगा। और हकीकत है कि वो जगह जो कल तक माँ बाप की थी, आज दोस्तों ने ली हुई दिख रही है। हर मसले का माँ बाप से कुछ नहीं कहना, और अंदर गौर करके देखेंगे तो बात यही कि इन्होंने कौन सी मेरी समझनी है। अपने आप को इतना बुद्धू बेवकूफ़ बना कर ना अपने बच्चों के सामने पेश करें कि आपके बच्चे जो हैं वो बस यही सोच लें कि आप बहुत बेवकूफ़ हैं और आप आज के दौर के क्या मसले सानेंगे। इसके लिए बल्कि मैं आप सबको एक मोटिवेशन दूंगी, है तो आपके लिए मुश्किल लेकिन अल्लाह आसान कर देगा। थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी से अपने आप को रोशनास कराएं। बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं ना, उनसे ही सीखें। चलो बेटा आओ आज तुम मेरे टीचर बन जाओ, तुम मुझे कंप्यूटर सिखाओ। ये आईफोन कैसे चलाते हैं, अच्छा ये डाउनलोड कैसे करते हैं, अच्छा ये एक्सेल कैसे चलता है, अच्छा ये अच्छा वो, इनसे ही सीखें। उससे पता क्या होगा कि आपके बच्चे आपको बुद्धू नहीं समझेंगे, बेवकूफ़ भी नहीं बनाएंगे। उनको पता है कि इनको सब पता है, ईमेल खोलना चेक करना सीखें। हमारा तो कंप्यूटर का नाम सुन के ऐसे लगता है दम ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, हाथ पो ठंडे होने लगते हैं बाज़ दफ़ा हमारे इस तरह की चीज़ों को। नहीं, उनके प्रॉब्लम्स को अगर आप हल करना चाहते हैं तो आप उनके लेवल पे चलें और फिर आप देखिएगा कि बच्चे शेयर करेंगे। और कभी बच्चे को ये ना फील होने दें कि अच्छा ये हो गया। बाज़ बच्चे बेचारे अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं हमें और हम जाके ना उनको डांटना शुरू हो जाते हैं, गए क्यों थे, किया क्यों था, और पियो ठंडा पानी और बीमार हो। सुन ऐसा ना, मिसाल एक बच्चा अगर उसके गले में दर्द हो रहा है, अब वो बच्चा आपको आके कहता है अम्मी आज गले में बहुत दर्द है, तो आपका क्या काम है। हाँ हाँ, और रात को खा रहे थे ना आइसक्रीम में। यकीन करें वो जख्मों पे नमक डालने का काम जितना माएँ करती हैं ना, उतना और कोई नहीं कर सकता। तानों पे ताने, और जाओ वो कहेगा गले, सुबह उठा बच्चे को एक तो खांसी हो रही है, गले में बलगम है, आपके हाँ मैंने कहा था ना रात को जैकेट पहन के जाओ, वो फेर रहे थे ना खुले सर, और ये था ना वो था, ना सुनो मेरी, देखना भी आगे तुम्हारे साथ और क्या क्या होना है। लाहौल्ला, अगली दफ़ा बच्चा आपको अपना गम सुनाएगा। इसको बड़े लोग कहते हैं कि आप जैसे दोस्तों के होते हैं, दुश्मनों की क्या ज़रूरत है, आप हमारे बहुत अच्छे दुश्मन हैं। तो ऐसा ना करें, ताने तो देने ही नहीं है बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी से हमने इसको निकाल देना इंशाल्लाह। आई पे चलते हैं, इग्नोर नॉट देयर चाइल्डिश फियर्स, टेल देम अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर। बस दफ़ा बच्चों के जहनों में कुछ खौफ होते हैं, अंधेरे से डरते हैं, किसी पतली सी रोड पे चलते हुए डरते हैं, बर्फ़ पे चलते हुए डरेंगे, कोई और खौफ आता है, अम्मी कोई घर में है, छत पे कोई है, अच्छा मुझे लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई है, छोटे छोटे खौफ होते हैं मासूम जहनों में। तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना, चुप करके सो जाओ कोई नहीं है, बस वो अब ऐसे चिपक के बैठ जाएगा बेचारा। नहीं, आप उसको प्यार से कहें नहीं बेटा अल्लाह हमारे साथ है, फिर क्या हुआ। यहाँ आप याद करें ना अबू बकर सिद्दीक को नबी सल्लम ने क्या कहा था कि अबू बकर उन दो के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिनके साथ तीसरा उनका रब है। तो बच्चों को कभी पीछे ना डालें। वही बात अर्ज करूंगी कि अगर आपने अपने बच्चे को अपने जैसा एक इंसान समझ लिया और अपने बराबर का इंसान समझ लिया तो इंशाल्लाह आप ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। ये जब उनको दबाते हैं ना, ये उनको छोटा समझ के दबाते हैं और बेवकूफ़ समझ के दबाते हैं, हालांकि उनके अंदर भी वही दिल है जो हमारे अंदर है, थोड़ा सा छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन जज्बात तो उनके भी मौजूद हैं, तो हमेशा उनको सिक्योर कीजिए। बच्चों को कभी खौफजदा नहीं करना चाहिए। जे जॉयफुली एक्सेप्ट देयर अपोलोजीज, अल्लाह इज़ ऑल फॉर गिविंग। बस दफ़ा बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, फिर बाद में आके आपके सामने उसका इजहार कर देते हैं, अम्मी प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़ अम्मी फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दें मैंने ऐसा किया। अब आप पकड़ जाए, हाँ आइए ना समझ, अब मैं नहीं बोलती, पीछे हो जाओ। नहीं, आप जितने मर्जी अपने बच्चे से नाराज़ हों, जिस उम्र का भी बच्चा है, छोटा है या बड़ा, छोटे बच्चे से ऐसा कर लेंगे ना तो बड़े बच्चे की निस्बत आपको आसान होगा। ये बात ज़हन में रखिए, छोटे बच्चे को माँ की बहुत ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे को माँ ये कह देगी ना कि मैं नहीं तुमसे बोलती, तो उसको लगेगा कि उसकी छत उतर गई। और बड़े को कहेंगे ना मैं नहीं तुमसे बोलती, कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र है, थोड़ी देर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यकीन करें, जो माएँ बचपन से बच्चों को इस तरह से टैकल कर लेती हैं ना, फिर बड़े होने पर ऐसी नौबत नहीं आती। शुक्र अल्लाह का कि बच्चा आपसे आके कह रहा है मैंने गलत काम किया। और आप फील करेंगे कि बच्चों में ये ट्रेंड बहुत होता है, गलती भी करते हैं फिर आके बता देते हैं मम्मी मैंने ग्लास तोड़ दिया। अब आप शुरू हो गए, भाई तोड़ने पे गुस्सा आ रहा है या बताने पे गुस्सा आ रहा है। तो कभी आपके बच्चों से कोई काम ऐसा हो जाए और वो अपोलोजाइज करें, प्लीज़ अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ ये काम मेरे से हो गया, तो फिर आप कहें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे। खुशी से करें, ये सोच लें कि मुझसे भी तो ये काम हो सकता था ना। आगे चलते हैं कि कीप देयर कॉन्फिडेंस, बच्चों के कॉन्फिडेंस को हमेशा कायम रखें। बस जब हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि सारी ज़िंदगी कोई काम ही नहीं कर सकते वो। आपने देखा होगा बस मर्द हो जाते हैं, बड़े बड़े शादियां हो जाती हैं, अम्मा से पूछे बगैर वो बीवी को भी उसके मैके से नहीं लेने जाते। अगर कहीं जाना है आना है तो जान पर बनी होती है कि अम्मा से कौन पूछे। इस तरह की कैफियत नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, ओवर नहीं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, गो हेड यू कैन डू इट, चलो शाबाश चलो चलो। अच्छा मैंने अपने कल्चर में ये फील किया है, हमारा जो इंडो पाक कल्चर है इसमें हम अपने बच्चों को बहुत सिक्योर रख के पालते हैं, ऐसा है। बच्चे को खिलाते हैं अपने हाथ से, हमारे नहीं नहीं ये गन डाल देगा, ये बखेर देगा, अच्छा जी फिर और कपड़े नहीं 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 इसकी बाजू मुड़ जाएगी, नहीं दे दें उनको। 3-4-5 महीने के हो गए, साल के हो रहे हैं, खाना खाना चाहते रख दें आगे, क्या होगा, थोड़ा सा फैलाएगा ना। उसको खाना दें ही सामने ऐसा कि जो गिरे तो फिर उठा के खा ले, कोई बात नहीं। साफ़ सुथरी उसके आगे एक ट्रे रखें, उसको बैठाएं सुकून से, उसे कह लो तुम खाओ, चम्मच भी दे दें उसको। फिर माँ कहती नहीं 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 चम्मच मुँह में लग जाएगी, नहीं ये हिल जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वो प्लास्टिक की चम्मच खरीदती हैं, फिर वो टेढ़ी चम्मच खरीदती हैं जो आम कीमत से 4 गुना ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि वो उसके ऊपर बेबी चम्मच लिखा होता है। इतने तरद्दुद की कोई ज़रूरत नहीं, दें उसको खाओ, चलो शाबाश। फिक्र के ना अब उससे के साथ मिलके आप साफ करें, चलो डालो इसमें वापस। कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को बहादुर बनाएं। आपने देखा होगा कि ये नॉर्वेजियन या यूरोपियन और अमेरिकन लोग ये अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट कर देते हैं। एक दफ़ा हम मेरे हाल बाय रोड यहाँ से स्वीडन जा रहे थे, कुछ ऐसी बात थी, हमारे आगे एक घुगला मुगला सा बच्चा था और उसकी अम्मा उसके साथ थी, तो वो वैसे ही बच्चा इतना प्यारा सा था। उसके बाद क्या हुआ, जब लंबा सफ़र हुआ थोड़ी देर हुई तो माँ ने पाउच में से केला निकाला तो उस बच्चे को खिलाना था, तो बच्चा यूं यूं करके ना नहीं कि मैंने खुद खाना है, बिलीव मी उस इतने, मेरा नहीं ख्याल 1 साल से वो ज़्यादा का बच्चा था, कम ही होगा, बस बैठता था माँ की गोद में इस तरह, उसने जिस तरह वो केला खाया, क्या सुभान अल्लाह, पूरा केला उसने खा लिया। आखिर में उसने उसका अंदर वाला गूदा अपने हाथ में पकड़ा, माँ को नहीं दिया, उसने खुद खाया और मैं उसको वॉच कर रही थी, खा लिया पूरा, थोड़ा बहुत थोड़ा लगा होगा इधर उधर, और उसकी माँ बड़े सुकून से बैठी के खाओ। हम होते थे हम कहते तोबा तोबा ये क्या हो जाएगा वो होगा, जब उसने खा लिया उसने वेट टिश्यू निकाला उसका साफ करके छिलका फेंक दिया। तो थोड़ा सा बच्चों को ऊपर आके आने दीजिए, आपके सामने आ जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, गलतियाँ करेंगे ना। देखिए अक्लमंद माँ बाप कौन होते हैं, अपनी ज़िंदगी में मौके भी देते हैं और डांट भी देते हैं, और फिर कहते हैं देखो आज हमने मौका दिया, तुमने काम किया, गलत किया, शुक्र करो पीछे कोई डांटने वाला है, कल तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं गलत क्या कर रहा हूँ। तो ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि किसी को मौका मिले और गलती हो जाए और इसकी इस्लाह हो जाए। एल पे चलते हैं, लिव अ गुड एग्जांपल बिफोर देम, इस्लामिक एटिकेट्स, अपने बच्चों के सामने एक अच्छी मिसाल बनिए, खुद इस्लामिक एटिकेट्स इख्तियार करें। अब इस्लामिक एटिकेट्स क्या होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ना, बैठना, सुबह शाम की दुआएँ, मोडेस्टी, यानी हमारा सारा इस्लामी फितरत के साथ है। इस्लामिक एटिकेट्स का मतलब कोई सिर्फ निकाब पहन के घर में फिरना या दाढ़ी रखना ये नहीं है। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लिविंग। अगर आप हर बात में बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं, दाएं हाथ से चीज़ लेती हैं, खुद ब खुद बच्चे भी लेंगे। और अगर आप एक हाथ से कांटा पकड़ के बाएं हाथ से खा रही हैं और एक से कोक पी रही हैं और फ़ोन आपका सीधे हाथ में था तो बाएं हाथ से आप चिप्स खा रही हैं, ये बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी आपको पिक करते हैं, तो लिहाजा आपने खुद उनके सामने एक मॉडल बनना है। एम से क्या है, मेक देम योर फ्रेंड्स। इस पर बात पहले भी हुई है, बच्चों को बस आज से आप कह लें मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बेटी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा बेटा है, छोटा है या बड़ा है। और जितने बड़े बच्चे हैं ना, अब आगे जो आपके टीन्स हैं ना, आप उनसे दोस्ती करें, अपोलोजाइज करें, बेटा मुझे तो बहुत सारी बातें नहीं पता थी, मैंने तो ऐसे ही तुम्हें ये समझा कि तुम दूर हो मैं हूँ। आज आप देखिए कितना डिस्टेंस क्यों दिखता है बच्चों और बड़ों में, आज इतनी दूरी है, इतनी दूरी है। शादी पे आप जाए चले, वहाँ तो मुझे लगता है बच्चों को ले जाने का इतना कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो रहा है। कोई पार्टी, यहाँ थोड़ा सा माहौल घरेलू है, लेकिन मैंने अमेरिका कनाडा में जो चीज़ देखी है, कभी आप किसी पार्टी में शादी में चले जाएं आपको बच्चे नहीं दिखेंगे, हैरत होती। बल्कि जब मैं अमेरिका में गई फर्स्ट टाइम, तो जो चीज़ मुझे बहुत खोल लाती थी, जैसे अपने मुल्क से बहुत डिफरेंट थी, मैं कहती थी इन लोगों के बच्चे नहीं हैं। एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, रात आपको कहीं को बच्चे नहीं दिखेंगे, जहाज़ों में बच्चे नहीं हैं, आप कभी अगर किसी मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, बच्चे नहीं दिखते। तो पता चलता है कि बच्चों को तो उन्होंने बेबी सिटिंग में डाला हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक डाला हुआ है। पेरेंट्स मोस्टली जॉब करते हैं, जॉब के दौरान अपने ये सारे काम होते हैं, शाम को बच्चे घरों में आते हैं, तो मुझे बड़ी उदासी महसूस होती थी। तो ये कल्चर बिल्कुल दुरुस्त कल्चर नहीं है। आपकी कोई पार्टी है, मिसाल है कि अब आप कोई ना कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे ना कि कहीं जाने आना है, आप अपने बच्चों को साथ लेके बनाएं, कभी उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, खेलें, चलाओ तुम भी बनाओ, तुम ये वो क्या होती है एक जो मर्ड सी होती है जिससे तोड़ तोड़ के चीज़ें बनाते हैं बच्चे, वही प्लास्टर सा होता है उसके, चलो बेटा तुम ये गोलियाँ बनाओ, मैं लंबा करती हूँ, लाओ मैं बेलने से बेलती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ। आप देखें बच्चों की आपसे दोस्ती हो जाएगी, उनको क्या करना है बाहर से दोस्त लेके। कोई चीज़ इम्पोर्ट कब की जाती है, जब आपके घर में नहीं होती। आप बच्चों के दोस्त बन जाएं, उनको ज़रूरत भी नहीं रहेगी बाहर के दोस्तों की। आप अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बने, पूछें बेटा आजकल क्या सोचती हो, कैसे होता है, क्या है, कोई क्या अच्छा लगता है तुम्हें, क्या बुरा लगता है, आज उदास क्यों हो, ऐसे क्यों। बच्चों की आंखों में आप क्या डाल के बात करें, बच्चे कभी आपसे अपना अपनी छुपाएंगे। ज़रा आपको जवान होते हुए बच्चों के रवैये में थोड़ी सी ऊंची नीची चीज़ दिखती है ना, फौरन उसी को केले में बैठो, बेटा मुझे बताओ तुम अपसेट आज करो, तुम खुश नहीं, सुबह उठे ना तो बच्चों की आंखों में यूं आंखें डालें, ठीक सही थी आप आज। छोटे बच्चों के नहीं, मैं बुजुर्ग तो सोते ही रहते हैं, बड़े होते हुए बच्चों क्या बात है, रात कितने बजे सोई थी, अब हम पूछते भी बता गए क्या बात है, सोई नहीं थी ना रात को, ये स्टाइल नहीं इख्तियार करना। यानी अब एक्सेप्ट कर लेंगे ये आपके बच्चे हैं। एक लड़की है तो मैं उसको देखती हूँ कि वो इतनी बाखलाक है, इतनी अच्छी अखलाक है, सारा खानदान गवाही देता है। जो ही उसकी जवान होती हुई बच्ची उसके पास आती है या बच्चा, तो वो खुरदरी बन जाती है। मैंने कहा बताओ ये बात क्या, तुम्हें ये क्या, मैंने महसूस किया कि तुम अपने बच्चों से बहुत खुरदरा बोलती। कहती मुझे नहीं अच्छी लगती है। क्यों, ये मेरे साथ होती है, फिर लोग कहते हैं अच्छा ये इतनी बड़ी बच्ची है आपकी, हम तो सोच रहे थे आपकी भी शादी भी नहीं हुई। यानी मार्केट वैल्यू डाउन होने लगती है अपने बच्चों के जवान होते ही। तो भाई अब आपके हैं मान लीजिए, चाहे दे दें किसी को फिर, अगर आपको अपनी वैल्यू करने, बस माई रियली कहती हैं शादियों फंक्शन में जाती है ना, तो खबरदार अगर मुझे वहाँ सबके बीच में मांगा तो मेरे से ज़रा परे ही रहना। लोग तो वो मेरे बारे में पूछ रहे थे कि अच्छा जी ये किसकी बेटी है और तुम साथ आ गई और तुम्हारे तो बच्चे हैं। बस दफ़ा लिख ले हम अपने ही बच्चों से जेलस फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल 100% बात है। हमारी जवानी जा रही है बच्ची की आ रही है, हमारा हुसन मान पड़ रहा है, बच्ची को निखार आ रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लोगों की नज़रों से हम पीछे हो गए, हम अपने घर वालों से बार दफ़ा फील कर रहे होते हैं। ऐसे जैसे माओं को आदत होती ना जहेज बनाने की, और पाकिस्तान में तो बड़ा ही अजीब कल्चर है, बेटी पैदा होती है तो बनाना शुरू होते हैं। तो वो किसी ने कहा अच्छा ये बेटी बड़ी हो रही है अब इसका बना दो, अब ये अच्छी बात है कि नहीं इसको नहीं हम डिस्कस कर रहे, तो माँ कहेंगे रहने दो अभी तो मेरे अपने ही नहीं लाड पूरे हुए, पहले मैं अपना अपने शौक पूरे करूँगी फिर इसके लिए कोई अच्छी चीज़ रखूँगी। ये सिर्फ एक मिसाल देने को कि सम टाइम हम इस तरह सोचते हैं। तो आप उनको दोस्त बनाएं, कैसे दोस्त बनाना ये एक अलग मौजू है। आपको दोस्तियाँ करनी आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबके दोस्त हैं, हमें पता है दोस्तियाँ कैसे रखते हैं, तो इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। एंड नेवर इग्नोर देयर एंडलेस क्वेश्चंस। कुछ बच्चे प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, इतने सवाल पूछते हैं, इतने सवाल पूछते हैं, बल्कि सवाल में से सवाल, और आखिर में माँ की डांट खा के चुप कर जाते हैं। एक माँ है, वो बच्चा उसका बहुत सवाल पूछता था, तो वो उनको डांटती थी, कहती सारी उम्र तुम सवाल ही पूछते रहोगे तो अमल कब करोगे। लेकिन आप कभी ऐसे ना करें। आपको पता है कि सवाल किस जहन में उठते हैं? जहाँ सोच दिमाग है ना। जैसे अभी बात हो तो मैं आपसे पूछूं भाई कि किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, तो आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे उस पर। वही पूछेंगे ना जिन्होंने बात गौर से सुनी है, सोची है। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी अपने बच्चों के साथ रखिए। नेक्स्ट, ओपन योर हार्ट टू देयर लव। अपने दिल को उनके प्यार के लिए खोल दें। उनको भी कहें कि वो आपसे एक्सप्रेस करें और आप भी करें। ये लिए दिए रहना, बस जब हम अकेले में अपने बच्चों की मोहब्बत में रो रहे होते हैं, उनके सामने आने पे इजहार नहीं करते। बिलीव मी, अगर मैं आप सब जितने भी लोग इधर माशाल्लाह बैठे ना, मैं आपसे कहूँ ना, क्या आप अपनी अम्मी के सामने जाके कह सकती हैं अम्मी आई लव यू? और क्या आप अपने बेटे या बेटी के सामने जाके उसको बुला के कह सकते बेटा आई लव यू? बहुत कम लोग हैं, यकीन करें, झिझक पड़ी हुई है जिसको अभी डांट के आए अब जाके कह दें आई लव यू, ताकि और ही सर पे चढ़े। कहें, क्लियर हो जाए, ओपन हो जाए उनके सामने। पी, प्रे फॉर देम बाय नेम। मेक, मे अल्लाह मेक देम दी कूलनेस ऑफ योर आइज। अपने बच्चों के नाम ले लेकर उनके लिए दुआ करें। नबी सल्लम की दुआएं आप पढ़िए, आपने हजरत हसन का नाम लेके दुआ की, हुसैन का नाम लेकर, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम ले लेके दुआ की थी। तो वो नाम लिया करें, बच्चे बहुत खुश होते हैं। जैसे आप लोग घर में, इसके लिए एक और टिप भी आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ मिल के एक एक नमाज कम से कम जमात से पढ़ लिया करें। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग करानी है, आपने तो पढ़नी होती है। चलो बच्चों नमाज पढ़ते हैं। चलो जी, बच्चे आगे आपके इधर उधर खड़े हो गए, जिस तरह भी खड़े होते हैं, फिर आप नमाज अपनी पढ़ें। बच्चों से कहे जो मैं करती हूँ तुम भी वही करो। ये छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, जिस तरह का माहौल होगा उस तरह कर ले। फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ चुके, फिर थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करें, आओ बेटा ये है वो, कोई भी ऐसी मत इस्लामी के लिए कुछ बच्चों की अपलिफ्टिंग करें। तो फिर उसके कहे बेटा मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि हम दुआ मांगें। ऐसे ही चलो, फिर आप पूरी दुआ में बच्चों के लिए दुआएं करें। इस पर बड़ी मज़े की एक बात मुझे हमेशा ही याद आती है, अक्सर मैंने सुनाई भी अपने ऐसे सेशंस में। मेरा ख्याल है कि मैं बहरीन में थी या दोहा में, कहीं इस्लामी किसी कंट्री में थी। 3-4 दिन का सेशन था, उसमें पहले ही दिन बात हुई थी बच्चों की तरबियत पे। उसके बाद 2-3 दिन और दर्स होते रहे, हर जगह माशाल्लाह वो सिस्टर्स आती रही। जिस दिन हमारा आखिरी दर्स था, तो एक सिस्टर ने कहा कि मैं कुछ शेयर करूँ। जी करिए, कहती उस दिन आपने ये जो बच्चों की टिप्स दी थी तो मैंने उस पर अमल किया। और मैंने क्या किया कि मेरे बच्चे जो थे ना, मुझे बहुत ही सता रहे थे। उनके ना शायद ट्विंस थे, छोटे छोटे टिंके पिंके से थे, गोल मटोल से बच्चे थे। कहती एक दिन जब मुझे इतना सता रहे थे, इतना सता रहे थे कि मुझे आपकी बात याद आ गई। मैंने वजू किया तो मैं जाय नमाज पर खड़ी हो गई, मैंने नफिल शुरू कर दिए। फिर उसके अंदर मैं सजदे में गई तो मैंने रो रो के दुआ शुरू कर दी, अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे दे। कहती उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे छोटे मेरे पीछे सजदे में जाके रो रहे हैं, अल्लाह हमें हिदायत दे दे, अल्लाह या अल्लाह हमें हिदायत। बिलीव मी, यकीन करें, उसने कहा, कहती कि ये खुद अपने लिए हिदायत मांगने लगे। तो आप दुआएं मांगिए, कोई बच्चा आपका दिल तोड़े ना, बड़ा जवान छोटा लड़की लुड़की, वहां से जरा सा मुनास खामोश रहे, शर्त क्या क्या बोलें कुछ ना। देखिए ये जो जुबान नहीं चुप रहती ना, ये हमें इतनी नेकियों से, इतनी नेमतों से महरूम करती है कि हम बाज़ दफ़ा लोगों की खैर लेना भी चाहते हैं तो नहीं ले पाते। लेकिन एक दफ़ा अगर आपके बच्चे ने आपका दिल तोड़ा, ऐसा दिल तोड़ा है, मिसाल देती हूँ, मैं सिर्फ मुख्तलिफ केसेस शेयर करती हूँ ना, कि आपका दिल करता है कि आपका बच्चा दाढ़ी रखे। अब आपने कोशिश भी की कि एकदम आपने उसको देखा वो क्लीन शेव करके आ गया, एक नज़र देखे कुछ ना, क्यों उससे खामोश, मुंह नीचे कर ले, मत देखे उसको, जाए नमाज पे आए, रोना शुरू कर दे, कुछ ना बोले, सिर्फ रोना शुरू कर दे। अगर तो वो इंसान का बच्चा है ना और उसने इंसान का दूध पिया, वो जरूर सोचेगा कि मेरी माँ को क्या हुआ, अभी तो अच्छी बली थी। रियल में अगर मेरे दिल में दर्द है और मेरे बच्चे को पता चल गया कि मेरी माँ इस बात से खुश नहीं, बस आप देखें वो काम हो गया आपके इन आंसुओं से जो आपने घंटा बोल के ताने दे के, अब्बा को बताऊंगी, अब नाना को बताऊंगी, अब तुझे मक्के भेज दूंगी, अब तुझे मदीने भेज दूंगी, तेरे लिए रोटी नहीं पकाऊंगी खिलाऊंगी, नेवर डू दिस। अल्लाह का दामन पकड़े और दुआ मांग ले। कभी आपको लगता है आपका बच्चा नजायज़ जिद कर रहा है, कहता है मैंने एक मुशरिक औरत से शादी करनी है, समझा रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, उधर जाइए, ए अल्लाह इसका दिल खोल, अल्लाह मेरा बच्चा है मुझे इससे प्यार है, अल्लाह मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना कर, अल्लाह कल करके इसने जो सीखना है इसको ऐसे सिखा। मैं कहती हूँ आप ऊंची ऊंची दुआएं मांगिए, फिर देखिए कि ये बच्चों के दिल कैसे आते हैं आपकी तरफ। ये हम अपने बिहेवियर की कमियों बेशियों की वजह से अपने बच्चों का अपना मुकाबिल बना लेते हैं। ये मुकाबिल नहीं है, ये हमारे हाथ पांव हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है ना, लेकिन हम इनको मिसयूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्यू क्विकन योर इंटरेस्ट इन देयर स्पिरिचुअलिटी, जिक्रुल्ला, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। अपना इंटरेस्ट बढ़ा दें इनके अंदर रूहानियत पैदा करने में। देखिए एक होता है दीन, समझिएगा, नमाज़ पढ़ो, 5 वक्त का बच्चे को नमाजी बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह रिचुअल है, लाजिम है, इस्लाम का तकाजा है। बच्चा 7 साल का होने लगे उसको तुम मौका दे दो। लेकिन एक होती है रूहानियत। रूहानियत क्या होती है? कि आपके बच्चे को अल्लाह से प्यार हो जाए, उसको अपनी मौत याद रहे, उसको अपनी जन्नत जहन्नम याद रहे, तज़किया जिसको के, इसकी कोशिश करें। ये शर्त नहीं है कि आपने उनको 5 वक्त नमाजी बना दिया है तो आपके बाद वो नमाजी फिर भी रहेंगे, अगर आपने उनको अल्लाह से नहीं जोड़ा हुआ, रूहानियत नहीं दी। लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि अभी आपके सामने वो 5 वक्त की नमाज़ खुद नहीं भी पढ़ रहे ना, लेकिन उनके दिल अब अल्लाह से जुड़ने शुरू हो गए हैं, अल्लाह से प्यार कर रहे हैं। देखिएगा वो मोहब्बत एक वक्त आएगा उनको 5 नहीं 7 वक्त का नमाजी बनाएगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को आप अल्लाह से जोड़ें, और उसका तरीका वही है, नेमतों पे गौर। बेटा ये किसने दिया हो देखो ना एकदम। अच्छे घर में आप ना थोड़े जॉली भी रहा करें। कितनी औरतें वायदा वेज अपने जवान बच्चों से जॉली रहती हैं, छोटों से तो चले कुछ लाड लूड कर ही लेते हैं, मजाक करें, प्यार करें, ये करें। बस आप देखें कि आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है, स्कूल जाते हैं, 8 9 साल के हैं, 10 के हो गए हैं, प्यार करते हैं ना आप उनको। आप रोज़ उनका लंच बनाते हैं, बनाते ही होंगे ना कुछ तो माए साथ देते। किसी दिन उसमें बच्चा खोले अंदर चूसनी रख दें, कभी लाली पॉप रख दें, कभी गुलाब का फूल रख दें, कुछ भी, जोक भी करें और सरप्राइज भी दें जो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते, वो दें। वो चीज़ जो वो हमेशा आपसे मांगते हैं लेकिन आप नहीं देती, मिसाल है उनकी सेहत के लिए ख़राब है, कोई स्पेशल कोई चॉकलेट उनको बड़ा पसंद है, कुछ भी, चुपके से किसी दिन रख दें। खाना पका रहे हैं, चाट बना रहे हैं, एकदम जल्दी से ऐसी आवाज़ बनाएं जैसे एक बहुत ऐसी बात है अचानक बोला, फिर देखें ओ देखो लुक एट द अनार दिखाएं, देखो कितना खूबसूरत है। इन्वॉल्व करें, इंगेज एंड इन्वॉल्व, ये दो चीज़ें ऐसी खूबसूरत हैं फैमिली को जोड़ के रखती हैं, ग्लू है ये। मियाँ को भी आप इसी तरह जोड़ सकते हैं। वो हमारी एक दोस्त थी तो वो कहती थी शादी के बाद मियाँ को इतने कामों में लगा दो, हर वक्त कोई काम बताई थी कि उस बेचारे को किसी और चीज़ की होश ही ना रहे। अब ये दुपट्टा रंगा दो, अब ये कर दो, मुझे उधर ले जाओ उधर ले जाओ, ताकि वो कहते ना कि अब ये बस मेरे ही साथ लगा रहे, तो उसको होश ही नहीं आएगी कि मेरे कोई और दोस्त भी हैं बाहर जिधर मैंने जाना था। लेकिन आप देखिए कि एक ख़ास हद तक रहते हुए आप अपने बच्चों को अपने से इंगेज कर सकते हैं। चलिए आर रिमेंबर देयर नीड्स, शो मर्सी टू देम। बस नीड्स बच्चों की बहुत ज़रूरी थी, यानी इसका तर्जमा क्या है, उनकी ज़रूरियात को याद रखें और उन पर नरमी का इजहार रखें। मिसाल दे रही हूँ सिर्फ ऐसे ही, छोटी बच्चियाँ होती हैं, यंग बच्चियाँ, अब नई नई प्यूबर्टी की एज शुरू हो गई, हो सकता है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने आपको कह दिया कि अम्मी आप आ रही हैं तो वो चीज़ ले आइएगा मेरे इस्तेमाल की, तो फिर आप उसको ख्याल रखें। आप तो कहेंगे कोई बात नहीं बाद में हो जाएगा ये होगा, लेकिन उसके लिए वो बड़ी बात है, उसके सर पे पहाड़ टूटा हुआ है, उसको मैनेज ही नहीं करना आ रहा, तो उसकी उस ज़रूरत का ज़रूर ख्याल रखें। और जब बच्चों को कोई ज़रूरत पड़े तो फिर आप उनको आगे से ताना ना दें, फिर रहम खां फौरन सोचें। इसके लिए इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या मसला है कश्मीर है? नहीं, कोई इनका मसला जो है ये जंगें बड़ी बड़ी नहीं, इनका मसला इस वक्त ये है कि ये मेरा ये प्रॉब्लम हल हो जाए। तो बस आप फिर उनके ऊपर रहम करते हुए उनकी चीज़ों को प्रोवाइड करें। एस शो देम द वे ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस, पीस बी अपॉन देम ऑल। यानी अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के तरीके बताइए। ये कैसे बताएंगे आप? स्टोरीज़ में, बेड टाइम स्टोरीज, उनके साथ आप इस तरीके से मामले करें कि जिससे उनको अच्छा लगे, हर वो चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में यानी अल्लाह के नबी और सहाबा कराम की मोहब्बत लाए वो उनके साथ पेश करें, जो आप कर सके जैसे कर सके। और इसके बेशुमार तरीके कुरान की क्लासेस में आने वाले स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बताए जाते रहते हैं हर वक्त। आगे चलते हैं। टी टीच देम टू अप्रिशिएट एवरी लिटल इन लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये सिखाइए कि छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको जिंदगी में मिली है या आप किसी की देखें या कोई आपको दे तो उसको अप्रिशिएट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहते हैं ये तो होना ही था, ये तो मिलना ही था। यानी बच्चों को छोटी छोटी नेमतों की कदर याद करवाएं। मसलन आप देखिए ना कि छोटा बच्चा है, अब आप उसको नेमत क्या दिखाते हैं, मिसाल है कैंडी लॉलीपॉप, उसको बताएं कि बेटा अल्लाह ने आप मेरे दिल में डाला कि ये कैंडी मैं आपको दूँ, तो आप उनको दें। फिर इसी तरह देखिए कि अम्मी अबू, ये कितनी बड़ी नेमत है, ये माँ और बाप की नेमत कितनी बड़ी नेमत है। छोटा बच्चा भाई नहीं अच्छा लगता आपके टीनेजर बच्चे को, वो कहता है इसको भेजें इधर, ये मेरी प्राइवेसी में मुखल होता है, ये मेरे दोस्तों के बीच में आके बैठ जाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, बेटा देखो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा छोटा भाई हो। मुझे अच्छी तरह याद है एक बच्ची है थी, वो अकेली बहन थी, भाई थे 3-4, हर वक्त अम्मी बहन चाहिए, अम्मी बहन चाहिए, अम्मी बहन चाहिए। भाई मैं कहाँ से लाऊँ, बस मुझे बहन चाहिए। चलो जी अल्लाह ने दे दी, एक बहन आ गई। अब शुरू में तो वो बड़ी खुश रही, उसको देखे नहलाए धुलाए जैसे छोटी बच्ची होती। अब वो बहन ज़रा सी बड़ी हुई ना, वो उसके ड्रेसिंग टेबल तक पहुँचने के काबिल, अब वो बहन बुरी हो गई, अम्मी इसने मेरी नेल पॉलिशें तोड़ दी, अम्मी ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा फिर वो बड़ी बहन की दोस्तों ने आना, उसने ऊपर अपने कमरे में जाके बांध देना, अब ये छोटी बहन टुप टुप करती ये भी अंदर जाके पहुंच जाना, तो इसने उसको खड़ा कर देना, उसने बैठ दरवाजे पे रोना। माँ ने उसको कहा ये बताओ कि तुम खुद कहती थी ना बहन चाहिए, तो फिर तो कहती थी मुझे ये छोटी बहन नहीं चाहिए, मुझे बड़ी बहन चाहिए। यानी इंसान की फितरत है कि जो चीज़ उसके पास नहीं होती उसको वो मांगता है, और जो होती है उससे बाज दफ़ा अपनी जान छुड़ाता है। तो उनको बताओ कि बेटा देखो छोटी बहन है ना, कल बड़ी हो जाएगी, फिर तुम्हारा साथ देगी, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। अब हर एक के पास तो बहन नहीं है ना, फ़ौरन बच्चों को दूसरों से रिलेट कराए, देखो बेटा आपका तो ये भाई है, वो फुला है, देखो उसका तो भाई भी नहीं है छोटा। तो इस तरह हमेशा रिलेट करके उनको खुश करते हैं। यू पे चलते हैं, अंडरस्टैंड दे आर स्टिल यंग एंड इनोसेंट, फितरत पे है वो, हमेशा ये अंडरस्टैंड करें कि वो अभी छोटे भी हैं और मासूम भी हैं फितरत में। उनसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आप जैसे बड़े हो जाएं। अब आप 30 साल की हैं अगर, तो आप सोचें कि आपकी 3 साल की जो बच्ची है वो आपके बराबर हो जाए, आपकी तरह सोचने लगे, तो ये ज़्यादती है ना। बाज़ दफ़ा बाज़ माएँ इतनी ज़्यादा येस डू दिस 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 रूलिंग होती हैं कि वो अपने बच्चों को भी अपने बराबर कर लेती हैं, काम कर रही हैं तो उनको भी सारा वक्त साथ लगाएं, तो थोड़ी सी उनकी इनोसेंस को सामने रखा जाए। वी verify your statements, speak clearly, repeat it 3 times like the way Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace be upon him used to. अपने बच्चों के साथ जब बात करें ना आप, तो स्लोली बात करें, क्लियर बात करें, और कम अज़ कम 3 दफ़ा रिपीट करें अगर मौका हो, जैसे कि नबी सल्लम की आदत थी। अच्छा आप तेज़ बोलने का क्या तरीका होता है? मसलन मैं आपको छोटी सी आपसे पूछती हूँ कि आप कैसे तेज़ कब बोलती हैं। आप सुबह अपनी जॉब पे निकल रही थी, आपके बच्चे अभी घर पे थे जिन्होंने आपसे 1 घंटा बाद में निकलना था, और इस 1 घंटे के बीच में प्लम्बर ने भी किसी ने आना था घर में, उसको आप उन्होंने कोई चाबी देनी थी, और कोई आपके मियाँ का भी काम था। आप ज़रा बताएं निकलते हुए आप अपनी बच्ची को कैसे इंस्ट्रक्शन देती हैं? हम नॉन स्टॉप बोलते हैं ये भी करना वो भी करना, चूल्हा भी बंद कर देना, दूध भी कर देना बंद, ये भी है, वो छोटे को बॉटल भी बना देना, और वो अंकल आएंगे तो चाबी भी दे देना। अब आप बताएं वो उसको क्या समझ आएगा? स्लोली कुछ नहीं आएगा ना। तो एक वक्त में एक बात बोलें, और अगर मौका हो तो उसको रिपीट करें। W विम देम फ्रॉम बैड कंपनी, ये जो वीन लफ्ज़ है ना, ये क्या है? छुड़ाना आहिस्ता आहिस्ता। आपको फील हो रहा है कि आपके बच्चे की दोस्ती किसी अच्छे बंदे बच्चे से नहीं है। 8-9 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, इनमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बच्चे अच्छे नहीं हैं, गलत काम करते हैं, गलत देखते हैं। अब आप एक तरीका घर क्या कि वो घर में आए, कोई ज़रूरत नहीं कल से उसके पास आने की, और बाद बार बच्चे ने उसी को बाहर खड़ा किया होता है कि आ जाओ मेरे साथ, वो आपको अभी अंदर बताने आया और आप उसी के खिलाफ बोल रहे हैं और बच्चा बाहर सुन रहा है। नेवर डू दिस। स्लोली स्लोली, जैसे बच्चे का दूध छुड़ाते हैं ना, एकदम नहीं छुड़ाते, स्लोली स्लोली करके उसका दूध छुड़ाती है ना माँ, इस कैफियत को विन कहते हैं। तो बच्चे की दोस्ती कैसे करें, पहले आप समझें कि इसकी वाकई दोस्ती बुरी है, फिर आप उसके दोस्त को बुलाएं घर, उससे बात करें। आप उस बच्चे को छुड़ाने से पहले उस बच्चे की भी तो इस्लाह कर दें, मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है, किस एज का, इससे ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी की कॉज पे आप उस बैड बच्चे से पहले ख़ुद बात करें। देखिए छोड़ना बहुत आसान होता है, काटना भी आसान है, लेकिन रिपेयर और इस्लाह बहुत मुश्किल काम होता है। जब आपको लगे कि ये बच्चा थोड़ा सुनने के काबिल है और ये सुन लेगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि ये वो जो चीज़ है आपके बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद भी बच्चा नहीं मानता ना, तो फिर आप उसको कोई और अच्छा ऑल्टरनेट दें और उसको फिर उसके फ़ायदे बताएं, उसकी बातें बता के आहिस्ता आहिस्ता पीछे कर लें, एकदम न उनके दोस्तों के ख़िलाफ़ करें, वरना क्या होगा, वो आपसे छुप के उनसे मिलेंगे, आपसे छुपाने लगेंगे। जब बच्चे आपसे कुछ छुपाने लगें तो सोच लेंगे गड़बड़ है, मामला ख़राब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, एक्स एक्स वो लफ्ज़ है जिससे बहुत कम लफ्ज़ बनते हैं। एक एक्स से लफ्ज़ बहुत आम है जो हम सबको पता है, एक्सरे। एक्सरे कहते हैं किसी चीज़ के अंदर देख लेना, यानी रेज होती हैं, तो एक्सरे देयर सोल। अपने बच्चों के अंदर झांकें। कैसे झांकेंगे आप कि मेरा बच्चा किस तरह का है? इसका देखिए बचपन से असरात शुरू हो जाते हैं। आप तरबियत से कैटर कर लेंगी, उसको टेलर मेड बना सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रूट्स अंदर मौजूद होती हैं। आपको लगता है ये बच्चा बहुत शाइंग है, ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, ये एक्टिव है, ये ढीला है, ये तेज़ है। आप उसके अंदर डीप इंटरेस्ट लें, फिर उसके मुताबिक उसकी पर्सनैलिटी डिवेलप करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसान है ना, तो उसको ज़मीन के अंदर बीज डालना होता है, तो बीज डालने से पहले वो क्या करता है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता है ना कौन सी चीज़ इधर है कौन सी उधर है, फिर बीज डालता है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं वहाँ चावल नहीं उग सकते, लेकिन गंदम उग सकती है, तो अगर आप फिर भी वहाँ चावल के बीज डालेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारा हर बच्चा कुदरत का एक शाहकार है, एक मशीन है, कोई फास्ट ग्रोइंग मशीन है, कोई स्लो है। कभी अपने दो बच्चों के बीच में ये कॉम्पिटिशन ना रखें। और एक बात देखी गई है और बाज़ रिवायतों से उसकी दलील भी मिलती है कि पहला बच्चा नस्बतन ढीला होता है, सुस्त होता है या कूल एंड काम होता है, यानी अच्छा माहौल मिल जाए तो वो बड़ा काम एंड बड़ा महज़ब बच्चा होता है, लेकिन बहुत एक्टिव नहीं होता। सेकंड बच्चा जो मिडल बच्चा है ना घर का, वो स्मार्ट होता है। अल्लाह जानता है, बाप सारे के अल्लाह करे हम मिडल ही हैं। आप में से अब कोई फर्स्ट है तो माइंड ना करें, मैंने पहले ही कह दिया कि ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि जिसको छुटलाते नहीं हैं हम लोग। अब होता क्या है कि पहला बच्चा था अकेला था, तो वो एक ही था, बहुत अच्छा लगा सबको, प्यारा भी बहुत लगता है बच्चा पहला, नानी दादी हर घर का प्यारा। जो ही दूसरा बच्चा आया, अब जब दूसरा बच्चा आता है तो वो बचपन से फील होता है कि वो एक्टिव है, अब चले थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ एक बच्चा 10 साल का और दूसरा छोटा बच्चा जो है वो 8 साल का है। अब 10 साल बाद वाला बच्चा जो है ना, वो बस सुबह उठ के ब्रश करके नाश्ता भी कर ले तो बड़ी बात है, माँ इस पर बड़ी खुश है कि अपना तो कर ले। और जो 8 साल का बच्चा है वो जाने से पहले अम्मी के साथ डिशेज भी डिश वॉशर में डाल देता है, ट्रैश भी निकलवा लेता है, और वो गाड़ी को भी जाके बाहर वार्म अप कर देता है, तो अब माँ क्या करती है, बस एक तुम कुछ नहीं करते वो देखो। अच्छा, एक तो हाल ये होगा, पहले बच्चे की पर्सनैलिटी को माएँ किल कैसे करती हैं, ये ताना दे के कि तूने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, वो देखा छोटा कैसा है, वो देखा छोटा कैसा है, ये तो हो गया इस पर। अब ये जलेगा कुड़ेगा कि भाई मैं खुद तो नहीं पैदा हुआ, मुझे ज़रा तेज़ पैदा कर लेती, को ज़रा पैसे ज़्यादा दे देती अल्लाह को, मैं एक्टिव पैदा हो जाता। हाँ अच्छा, इधर इसकी पर्सनैलिटी इधर चॉप कर दी, अब उधर क्या है, अब वो जो तेज़ बंदा है बच्चा है वो क्या हमेशा आपके कहने पर काम करेगा, वो काम भी कर आता है कभी कभी जो आप नहीं कर कहती, वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है भाई, वो नहीं आपके कपड़ों में निलेगा, वो बाहर जाएगा। अब जब आप उसने ज़रा कोई बात आपके मिजाज से पहले कर ली ना खिलाफ की, तो कहें तू बड़ा चलाक है, वो देख अपने उस भाई को देख वो कितना सीधा, वो आज तक मेरे आगे नहीं बोला तुम ऐसे हो। अब इसको चलाक होशियार होने का ताना दिया, अब ये फिर इसके अंदर से वो जोश और उबाल जो इसके अंदर आया था कि अम्मी तो बड़ी खुशी होंगी मेरा ये काम देख के, मैंने खुद ही कर लिया ये काम, तो क्या हुआ, इधर भी गलत तो इधर भी गलत, करना क्या है, हर एक उसकी जगह पर रखें। ये अगर मेरा मोती का फूल है तो ये मेरा गुलाब का फूल है, अगर ये मेरी कली है तो ये मेरी बेल है। हर बच्चे के अंदर से खूबी ढूंढें। माँ इतना गहरा ताल्लुक है माँ का और बाप का भी, ऑफकोर्स बाप तो है ही है, मैं जहाँ लफ्ज़ माँ कहूँ ना तो आपके 75% और पीछे 25% बापों का लगा लें, लेकिन ये फैक्ट है कि बच्चों के आपस के प्यार और मोहब्बत के अंदर माँ का बहुत दखल है, और एक दूसरे से खिलाफ करने में भी माँ। ये जुमला इतनी कसरत से माएँ बोलती हैं, ये खा लो जल्दी से नहीं तो वो दूसरा छोटा भाई आके खा जाएगा, बोलते हैं हमने अपने बड़े बच्चे या एक बच्चे को क्या तसव्वुर दिया कि छोटा भाई तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारा कर लेगा, और अगर छोटे भाई ने बड़े भाई का कोई कपड़ा पहनना जा पहन लिया, क्या हुआ कुछ हुआ, तो उसको माँ उसके खिलाफ कर देगी। अच्छा तो पहले उसको ना पता चले, नहीं तो तुम्हें मारेगा। कभी भी बोलने से पहले सोचे बगैर ना बोलें, सोचें मैं जो कहने लगी हूँ, मैं तो बोल के पीछे हो गई, इसको तो असर रहेगा। ये सोचेगा मेरा भाई ऐसा है या मेरी बहन ऐसी है, तो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को किल ना करें, गहराई से अंदर उतरें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह मारी ना लशिया कमा हिया, अल्लाह चीज़ें जैसी हैं मुझे वैसी दिखा, अल्लाह मारी ना हक का हक कम वर्जुक न इतबा हो, अल्लाह मुझे हक को हक दिखा और बातिल को बातिल करके दिखा, और मुझे हक को मानने की और बातिल से रुकने की तौफीक दे। ये इस पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह कहीं मैं किल ना कर दूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे बड़े खूबसूरत फ्रेश पत्ते थे ज़मीन पर और नादानगी में नादानिस्ती में मैंने जाके उन पर पाँव रख के उनको चॉप कर दिया। बिल्कुल हमारे बच्चे बाज़ दफ़ा इस तरह ब्रोकन हो चुके होते हैं। ऐसे बच्चों को भी मैं जानती हूँ कि बड़े होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद भी बाप उनको उनकी बीवियों के सामने भी थप्पड़ मार देते थे। नतीजा क्या हुआ? नफरत। उन पर नहीं बोल सकते, रोब है, गुस्सा है, लेकिन पीछे से वो गुस्सा उनके अंदर इस तरह से झुंझलाहट आती है और वो उसका इजहार अपने बच्चों पे करते हैं। तो बहुत मुश्किल काम है, लोग इसको आसान समझते हैं लेकिन हकीकत में ये बहुत मुश्किल काम है, इसको बहुत ज़िम्मेदारी से करने की ज़रूरत है। वाई पे चलते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिक, यान फॉर अल्लाहस बेस्ट फॉर देम, अल्लाह से अपने बच्चों की बेहतरीन चीज़ की इल्तजाएं करें, तड़पें कि अल्लाह मेरे बच्चों को बेस्ट दे दे। क्या होता है वो? रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार, के अल्लाह मेरे बच्चों को बेहतरीन देना, जो भी अल्लाह ने बेहतरीन चीज़ रखी है वो अल्लाह ताला आपके बच्चों को दे, ये हमेशा गोल रखे। ये ना कहा करें अच्छा मेरे बच्चे तो महरूमियों के लिए पैदा हुए हैं, नहीं। और यहाँ फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि ये प्रोग्राम ये सिर्फ नॉर्वे या कनाडा अमेरिका में रहने वाले माँ बाप के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के गाँव में रहने वालों के लिए भी रूल्स हैं। रूल सब जगह एक ही होते हैं, थोड़ा सा सहूलतों का फ़र्क फर्क हो सकता है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ठीक है। आखिरी लफ्ज़ जेड पे चलते हैं। जी जी लॉसली, ये कुछ लफ्ज़ इस तरह के मुझे खुद भी पढ़ने में मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन फ़र्क भी हुआ, लेकिन मानी इंशाल्लाह आपको ठीक ही बताऊंगी। गाइड देम इन दी कुरान एंड सुन्ना, अपने बच्चों को जिसको कहना चाहिए ना कि एक कमिटमेंट के साथ, जिसको आप कहना चाहिए कि हुकअप, उनको अगर आपने गाइड करना है ना तो उसके अंदर जो आपके पास बुक होनी चाहिए वो कुरान और सुन्नत है। क्योंकि आपके बच्चे जब अल्लाह के दीन से बराह रास्त रहनुमाई ले लेते हैं तो उसके बाद हकीकत में उनको किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे इसमें किसी का अमल बहुत अच्छा लगा, कहने लगी कि मैं अपने बच्चे से बात करती हूँ ना, हर माएँ करती हैं, बैठते खाना खाते खिलाते पिलाते, तो वो कहती कि मैंने अपने बच्चे के साथ इस तरह से सेटिंग की कि मैं उसके साथ कहानियों की तौर पे सूरत फातिहा से लेकर शुरू कर दी मैंने बात। अब आप सोचे सूरत फातिहा है क्या, आप उसको जाके लफ्ज़ी तर्जुमा और ग्रामर और रूट वर्ड्स कराएंगे? नेवर। ऐसे ही आज के खाने के दौरान बातें की, बेटा देखो अल्लाह ऐसा रहमान पे रहीम पे मालिक पे इस तरह, फिर क़्यामत के दिन की कुछ बातों पे बात करके आखिर में गाइडेंस दे की बात करनी। अब हुआ क्या कि बच्चा तकरीबन 7-8 साल का था जब माँ ने ये सिलसिला शुरू किया। अब अगले दिन आप देखिए कि सूरत बकरा का पहला रुकू आ गया। आप खुद सोचें कि जब एक बच्चे के साथ एक रुकू रोज़ माँ करती है तो बच्चे के साथ साथ कुरान भी आगे जा रहा है ना। 8-9 साल की उम्र में अगर आप ये शुरू करें, आप आज ही तक हिसाब लगा लें 500 कुछ रुकू हैं, ना भी रुकू का हिसाब रखें, टॉपिक का हिसाब रख के देख लें, 12-13 साल की उम्र पे पहुंचने तक आप कहानियों के तौर पे उसको कुरान सुना चुके होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? हमें भी तो कुरान अरबी का खोल के उर्दू में समझना आता हो तो फिर ही है ना, क्योंकि बच्चे आपके सामने कुरान खोल के पढ़ के तर्जमे से सुनाएंगे बोर हो जाएंगे। हमेशा ज़ुबानी बात जो की जाती है उसका आई कॉन्टैक्ट होता है, दिखी हुई चीज़ों को देखने में बच्चे पीछे होते हैं। तो बहरहाल ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक कि जिसमें हम अपने बच्चों की नफसियात को सामने रखते हुए उनके साथ बात कर सकते हैं।